कुछ पूछ रहा हूं मैं, किससे पूछकर तुमने घर छोड़ने जितना बड़ा कदम उठाया? क्या सोचकर तुम घर से भागी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की? नित्या अब भी किसी गुनाहगार की तरह उनके सामने सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। मिस्टर शेरगिल का गुस्सा सारी हदें पार करने लगा था, लेकिन जब उनकी नज़र नित्या के डर से कांपते वजूद पर पड़ी तो उन्होंने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली, भौहें से कोड़ते हुए चेहरा फेर लिया। गहरी सांसें लेते हुए उन्होंने अपना गुस्सा थोड़ा शांत किया और वापस नित्या की तरफ पलटे। वो अभी भी सर झुकाए खुद में सिमटी हुई सी खड़ी थी। नित्या, तुम अब 2 साल की छोटी बच्ची नहीं रही कि जो दिल में आया कर दिया। बड़ी हो गई हो, थोड़ी समझदार और जिम्मेदार बनो। अंदाजा है तुम्हें कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता था? अपनी जिंदगी को लेकर इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? इतने दिन घर से दूर रही, एक फोन तक नहीं किया, एक बार भी तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आया कि यहाँ हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे? आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। मैंने इतनी बार आपको कहा था कि मुझे तेज से शादी नहीं करनी। वो मुझसे कितना बड़ा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे वो मुझे देखता है मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसके आसपास भी नहीं रहना चाहती। और आप उसी से मेरी शादी करवाना चाहते थे, मुझे फोर्स कर रहे थे, तो और क्या करती मैं? तेज से शादी करने से अच्छा मुझे घर छोड़कर जाना लगा तो चली गई। उसके बाद जो होता, कम से कम उस तेज से मेरी शादी तो नहीं होती। इतनी देर में अब नित्या ने मुंह खोला था। उसकी आंखों में नाराजगी थी और अंदाज से साफ जाहिर था कि उसे अपने फैसले पर जरा भी अफसोस नहीं था। तेज से शादी ना करनी पड़े इसलिए तुम घर छोड़कर चली गई? अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? तेज से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद होती, तब उसका जिम्मेदार कौन होता? घर छोड़ने के बाद तो फिर भी संभावना थी कि कुछ गलत नहीं होता, लेकिन अगर रहती तब तो पक्का आप मेरी लाइफ बर्बाद कर देते, उस तेज धनराज से मेरी शादी करवा देते। इसीलिए मैंने वो डिसीजन लिया जो मुझे सही लगा। नित्या की आंखों में कोई डर या पछतावा नहीं था। शायद अगर आज भी उसे मौका मिलता तो वो वही डिसीजन लेती। मिस्टर शेरगिल हैरान थे। उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी, कोई डर नहीं था कि उसके साथ क्या हो सकता था, जबकि उसके साथ बहुत गलत होने वाला था। उसे बस तेज से शादी नहीं करनी थी और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। मैं तेज से शादी नहीं करूंगी, आपकी इसी जिद की वजह से मैं घर छोड़कर गई थी और वापस नहीं आना चाहती थी। आप मुझे ज़बरदस्ती वापस तो ले आए, लेकिन अब अगर आपने तेज से शादी के लिए मुझे प्रेशराइज किया तो मैं दोबारा घर से चली जाऊंगी, कभी वापस भी नहीं आऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाई तो अपनी जान दे दूंगी, लेकिन कभी तेज से शादी नहीं करूंगी। मिस्टर शेरगिल शॉक थे। साफ जाहिर था कि नित्या मजाक नहीं कर रही थी। अचानक ही मिस्टर शेरगिल को मानव की कही बात याद आ गई। यही तो कह रहा था वो, वॉर्न कर रहा था उन्हें। उस वक्त उसकी बातें उन्हें कितनी बुरी लगी थी, कितना गुस्सा आया था उस पर, लेकिन अब उन्हें उसकी कही सभी बातें सही लगने लगी थी। मिस्टर शेरगिल के दिमाग में काफी कुछ घूम रहा था और चेहरे पर सर्द एक्सप्रेशन मौजूद थे। उस लड़के को कैसे जानती हो तुम? जान बचाई थी उसने मेरी। अगर उस रात वो मुझे उन गंदे लड़कों से नहीं बचाता तो आज मैं यहाँ ऐसे आपके सामने नहीं खड़ी होती। कब से जानती हो उसे? उस दिन पहली बार मिली थी। मिस्टर शेरगिल की भौहें खतरनाक अंदाज में से कुड़ गईं। उन्होंने रोष भरी नजरों से उन्हें घूरा। पहली बार मिली थी और एक अनजान लड़के के साथ उसके घर चली गई? डर नहीं लगा तुम्हें? अगर वो तुम्हारे अकेले होने का फायदा उठाकर कुछ गलत कर देता तो? आपको मैं इमैच्योर लगती हूँ, लेकिन मैं ऐसी हूँ नहीं। लोगों की पहचान है मुझे। मानव ने मुझे उन आवारा गुंडों से बचाया था, मैं उसके साथ सेफ थी। वो मुझे अपने घर भी सिर्फ इसीलिए लेकर गया था क्योंकि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती थी, और रात के वक्त मेरा अकेले अनजान रोड्स पर भटकना मेरे लिए सेफ नहीं था। मैंने उससे अपने बारे में झूठ भी इसीलिए कहा क्योंकि अगर सच बताती तो वो उसी वक्त मुझे यहाँ छोड़ जाता और मुझे वापस नहीं आना था। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़के से? कहीं उसे लाइक तो नहीं करने लगी? मिस्टर शेरगिल शक भरी नजरों से उसे घूरने लगे। आज उन्हें नित्या में बहुत से चेंजेस नजर आ रहे थे। जैसे आज वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, उनकी बातों का विरोध कर रही थी, बगावत की शुरुआत होती नजर आ रही थी। जिस तरह पहले मानव की जान पर बात आने पर वो घबरा गई थी और अब जैसे बोल रही थी, मिस्टर शेरगिल का शक बढ़ने लगा था। जवाब देने के बजाय नित्या ने अपना चेहरा फेर लिया। मिस्टर शेरगिल की भौहें तन गईं। नित्या, मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ, वो लड़का कभी इस घर का दामाद नहीं बन सकता। उसकी औकात नहीं कि हमारे सामने खड़ा भी हो सके। मैं कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर कुछ है तो अभी इसी वक्त ख़त्म कर दो और भूल जाओ उस लड़के से। मिस्टर शेरगिल ने सख्त निगाहों से उसे घूरते हुए वार्निंग दी, लेकिन नित्या अब भी शांत खड़ी थी, जैसे इन सब बातों से उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो, उनकी बातों की उसकी नज़रों में कोई अहमियत ही ना हो। नित्या का ऐसा बिहेवियर देखकर गुस्से से मिस्टर शेरगिल का खून खौल उठा। आज से और अभी से, जब तक मैं ना कहूँ, तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। मैं तेज से शादी नहीं करूँगी। अगर आपने मुझ पर प्रेशर बनाया, मुझे इस रूम में बंद करके रखने की कोशिश की, तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन कभी उससे शादी नहीं करूँगी। मैं तेज से तुम्हारी शादी नहीं करवा रहा, लेकिन शादी तुम्हारी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा, ये बात हमेशा याद रखना।
मिस्टर शेरगिल शायद कुछ जताने की कोशिश कर रहे थे। नित्या शॉक थी और आंखें बड़ी बड़ी किए अविश्वास भरी नजरों से उन्हें देखने लगी थी। तेज से मेरी शादी नहीं होगी, मतलब कि आपने अंकल को मना करके शादी कैंसिल कर दी? नित्या के चेहरे पर खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव मौजूद थे, जबकि मिस्टर शेरगिल उसे उसके सवाल को इग्नोर करते हुए रूम से बाहर निकल गए और पीछे छोड़ गए नित्या के मन में ढेरों सवाल। मिस्टर शेरगिल जा चुके थे। नित्या अब भी खुद में उलझी हुई सी वहीं खड़ी उनकी बातों और उसके पीछे छुपे मतलब को समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी अचानक डोर खुला, जिसने नित्या का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। जैसे ही नित्या की नजर सामने आई, उसकी आंखें चमक उठी और होठों पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। दरवाजे पर एक 75-80 साल का उम्रदराज आदमी खड़ा था, रणधीर शेरगिल, विधान शेरगिल के पिता और नित्या शेरगिल के दादा। उनकी उम्र भले ही ज्यादा हो चली थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही नरमी और वही गहराई थी जो कभी उनकी जवानी में भी लोगों को बांध लेती थी। उनके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व अभी भी उतना ही शालीन था। धीमी नबीतुली चाल, धीमी आवाज पर असरदार लहजा और चेहरे पर ऐसी गरिमा जैसे उन्होंने जिंदगी से लड़कर हर जीत और हर घाव अपने पास सहेज रखा हो। 6 फुट से भी लंबी हाइट, उस पर सफेद कुर्ता पजामा जिसमें वे डैशिंग लग रहे थे। उनकी पर्सनालिटी दबंग आदमी जैसी थी और जब मूछों को ताव देते तो वो और भी ज्यादा प्रभावशाली लगते। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी उनका एक अलग ही ऑरा था। दादू, नित्या खुशी से चिल्लाई। दादाजी ने अपनी बाहों को फैलाया और वो दौड़कर जाकर उनके सीने से लग गई। दादाजी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। नित्या बेटा, आप ठीक है? दादाजी ने उसे खुद से दूर करते हुए सवाल किया। उनकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। नित्या मुस्कुराई। यस दादू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, विधान ने आप पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया?
नहीं दादू, डैड से ज्यादा गुस्सा नहीं किया, और अब तो मुझे उनके गुस्से की आदत हो गई है। कभी कभी डर भी जाती हूँ, लेकिन आज मैं डरी नहीं। मैंने उनकी हर बात का जवाब दिया, उन्हें बता दिया कि मैं तेज से शादी नहीं करूंगी, और अगर उन्होंने मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो मैं फिर से घर से भाग जाऊंगी, इस बार वापस भी नहीं आऊंगी। और अगर उन्होंने मुझे यहाँ बंद करके रखने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस बार मैं सच में भाग गई थी, इसलिए डैड मेरी धमकी से डर गए और उन्होंने कह दिया कि वो तेज से मेरी शादी नहीं करवाएंगे। नित्या ने अपने अकॉर्डिंग ही कुछ भी अज्यूम करके उसे सच मान लिया था। वो खुशी से चहक रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभरे। वो कुछ परेशान नजर आने लगे।